अब रमज़ान अल मुबारक की दुआओं के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी रिवायत नकल करते हैं कि मौलाए कायनात ने फरमाया, माहे रमज़ान में ज़्यादा दुआ किया करो और तौबा इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि दुआ के वसीले से तुमसे मुसीबतें दूर की जाएंगी और तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम के इरशादात मुनाजात आपकी दुआओं में इल्म का बड़ा ज़खीरा मौजूद है और ये इंसान की तरबियत में बहुत मुआविन साबित होती हैं। रमज़ान अल मुबारक की दुआओं को तवज्जो और तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो रमज़ान अल मुबारक के फ़ज़ाइल भी हमें समझ आएंगे और ये भी समझ आएगा कि इस माह में हमारा मकसद हदफ क्या होना चाहिए। ये दुआएं हमारी तरबियत कर रही हैं कि हमें ये महीना कैसे गुजारना है। और आयतुल्ला सैयद अली ये कहते हैं कि माहे रमज़ान की दुआओं में एक चीज़ जो बार बार दोहराई गई है वो दुनियावी ज़िंदगी के बाद के मराहिल की जानिब तवज्जा दिलाना है, यानी मौत, कब्र, आलम कयामत और अल्लाह ताला के हिसाब किताब सवाल जवाब से रूबरू होने के मौके पर इंसान को पेश आने वाली मुश्किलात की जानिब तवज्जा मबजूल कराई गई है, जो कि माहे रमज़ान की दुआओं का नुमाया पहलू है। अच्छा, हम जब भी दुआ पढ़ें तो हम अपने जहन में ये रखें कि हम दुआ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी रखें कि ये दुआएं हमें तालीम दे रही हैं, हमें सिखा रही हैं कि तुम्हारा हदफ ये होना चाहिए, तुम्हें ये हासिल करना है। क्या वो कि जो दुआ में पैगाम दिया जा रहा है। अभी हम कुछ जुमलात दुआओं के बयान करेंगे। मफातुल जिनान में रमज़ान मुबारक की रातों में पढ़ने की दुआओं में एक दुआ में अल्लाह से यूं दुआ की जा रही है कि जन्नत के मेवे और वहाँ के परिंदों का गोश्त हमें खिला, सुंदुस, हरीर, इस्तबरक के बने लिबास हमें पहना। ये नहायत उम्दा कपड़े हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। आखरत की नेमतों के बारे में हम समझ नहीं सकते हैं कि वो कितनी उम्दा हैं। दुनियावी चीज़ों से मिसाल देके समझाया जाता है। बहरहाल आखरत की तरफ तवज्जा दिलाई जा रही है। हम सिर्फ इसी दुनिया के खाने और पहनने के बारे में सोचते हैं, हमें आखरत की तरफ भी तवज्जा करना है, तवज्जा दिलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर हमें ये अच्छी उम्दा नेमतें भी हासिल हो सकती हैं और इसके उलट भी हो सकता है। ये हमारे आमाल पर मुनासिर है क्योंकि इसी दुआ में आके अल्लाह से यूँ दुआ की जा रही है कि हमें जक़ूम और जहरीली घास ना खिला, हमें शैतान का हम नशीन ना बना, हमें जहन्नुम में चेहरों के बल ना लटका, आग का लिबास और कतिरान का लिबास ना पहना। कतिरान के मायने डिक्शनरी में लुगत में यह है कि ये तारकोल जैसी चीज़ है। और ज़क्कूम का ज़िक्र कुरान में आया है। सूरह दुखान में परवरदिगार फरमा रहा है कि ज़क्कूम का दरख्त गुनाहगार का खाना होगा जैसे पिघला हुआ तांबा, वो पेटों में इस तरह उबाल खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी। अच्छा, इसी दुआ का ये जुमला कि हमें शैतान का हमनशीन ना बना, तो ये दुनिया में शैतान की हमनशीनी दोस्ती कैसे हो सकती है? क्या आपने कभी देखा कि शैतान आए और कहे कि मैं दोस्ती करने आया हूँ और शैतान के साथ किसी का उठना बैठना आपको नज़र आए? कैसे शैतान की हमनशीनी हासिल होती है? इसकी बहुत सारी तशरीहात हो सकती हैं मगर हमारी नाक़िस अक़ल में जो बात समझ आई है वो ये है कि इंसान ऐसे लोगों से दोस्ती रखे कि जो शैतानी काम अंजाम देते हैं और फिर उनके कामों में शिरकत भी करे। इसके अलावा टीवी या इंटरनेट वगैरह के ज़रिए उन चीज़ों में मशगूल रहे जिनको खुदा ने हराम करार दिया, और बुरे काम करने वालों को पसंद करे, अपना फेवरेट बनाए। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, टीवी एक्टर वगैरह ही पसंदीदा हैं, उन्हीं को अपना आइडियल बना लिया जाता है। तो बहरहाल जितनी देर इंसान शैतानी चीज़ों में मशगूल रहता है या शैतानी काम करने वालों के साथ उठता बैठता है, उनके कामों में शिरकत करता है, तो गोया उसने शैतान की हमनशीनी दोस्ती अख्तियार की हुई है। रमज़ान मुबारक की रात में पढ़ी जाने वाली दुआ में खुदा से ये दुआ भी की जा रही है कि हमें अपनी राह में शहादत नसीब कर दे, देखिए, खुदा की राह में शहादत बहुत बड़ी शहादत है और हमारा हदफ मकसद यही होना चाहिए, और इस शहादत को हासिल करने के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजारना होगी कि जिसका अंजाम शहादत पर हो। एक दुआ ये की जा रही है कि मुझे उन लोगों में करार दे जिनके ज़रिए तू अपने दीन की मदद करता है और मेरी जगह किसी और को ना दे। हम दीन की मदद करें, अगर हम नहीं करेंगे हमारे बजाय कोई और कर देगा, नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, हम सआदत से महरूम हो जाएंगे। दीन की खिदमत की सआदत हम हासिल करें, क्योंकि सैयद शहदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें यही दर्स मिल रहा है। मगर इसके लिए, दीन की नुसरत करने के लिए पहले हमें ख़ुद को दीन सीखना होगा। अब यहाँ पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हम दीन इस्लाम को सही तरह से सीखें, समझें, अहकाम को दलील के साथ हासिल करें। दुआ इफ्तिताह में यूं दुआ की जा रही कि या अल्लाह, हम तेरे हुजूर आजिज़ी से इल्तिजा करते हैं कि एक अच्छी हुकूमत अता फरमा जिसके ज़रिए इस्लाम और अहले इस्लाम इज़्ज़त और गलबा पाएँ, निफाक और मुनाफिकीन जलील हों, और इस हुकूमत में हमें अपनी अताअत की तरफ बुलाने वाले बना और अपने रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाले करार दे। अब इसमें मुनाफिकीन के जलील होने की दुआ की जा रही है, तो हर पढ़ने वाला पहले अपना मुहासबा करें कि अगर हमारे अंदर कहीं निफाक मौजूद हो तो हम उसे ख़त्म करें। और दूसरी जो दुआ ये की जा रही है कि अल्लाह से कि हमें अपनी अताअत की तरफ बुलाने वाले बना, तो उसके लिए तो पहले हमें अल्लाह की अताअत खुद करना होगी ना, जब ही तो हम दूसरों को अताअत इलाही की तरफ बुलाएंगे। और फिर सहर की दुआओं में एक मशहूर दुआ, दुआए अबू हमज़ा सुमाली, जिसके बारे में मफातिल जिनान में रिवायत नकल की गई है कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम रमज़ान की रातें नमाज में गुजारते और सहरी के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। ये काफ़ी तवील दुआ है, दुआए अबू हमज़ा सुमाली। अगर एक साथ इसको पढ़ना मुश्किल हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जाए। बहरहाल, इस दुआ में जो अल्लाह से दुआ की जा रही है उसके कुछ जुमले बयान करेंगे कि अल्लाह से यूँ दुआ की जा रही है कि मुझे ख़ुद अपने आप पर रोने की तौफीक दे, क्योंकि मैंने अपनी उम्र टाल मटोल और झूठी आरज़ुओं में गंवा दी, और अब मैं अपनी बेहतरी से मायूस हो जाने को हूँ तो मुझसे बुरा हाल और किसका होगा? अगर मैं इसी हाल के साथ अपनी कब्र में उतार दिया जाऊँ जबकि मैंने कब्र के लिए कुछ सामान मुहैया नहीं किया और नेक आमाल का बिस्तर नहीं बिछाया कि आराम पाऊँ, तो ऐसे मैं क्यों जारी ना करूँ, यानी गिरिया ना करूँ? मुझे नहीं मालूम कि मेरा अंजाम क्या होगा। मैं देखता हूँ कि नफ्स मुझे धोखे देता है, हालात मुझे फरेब देते हैं, और अब मौत ने अपने पर मेरे सर पे फैला दिए हैं, तो कैसे गिरिया ना करूँ? मैं जान के निकल जाने पे गिरिया करता हूँ, कब्र की तारीकी और उसके पहलू की तंगी पे गिरिया करता हूँ, मुनकर नकीर के सवालात के डर से गिरिया करता हूँ। इसी दुआ में आगे जाके यूँ दुआ की जा रही है अल्लाह से कि रहम फरमा इस दुनिया में मेरी बेकसी पर और मौत के वक्त मेरी तकलीफ़ पर, और कब्र में मेरी तन्हाई और पहलुए कब्र में मेरी खौफ जदगी पर रहम फरमा। जब मैं हिसाब के लिए उठाया जाऊँ तो अपने हुजूर मेरे बयान को नरम फरमा, मेरे आमाल में से जो लोगों से मख्फी हैं उन पर माफ़ फरमा, मेरी जो पर्दा पोशी की है उसे दायमी कर दे। हमारे कितने आमाल ऐसे हैं, बुरे आमाल, जिनको अल्लाह ने छुपाया हुआ है, पर्दा डाला हुआ है। और बहरहाल, इसमें आगे ये दुआ की जा रही है कि उस वक्त रहम फरमा जब मेरे दोस्त बिस्तर पर मेरे पहलू बदलाते होंगे, यानी वक्त आखिर, और उस वक्त रहम फरमा जब नेक हमसाए तख्ता गुस्ल पर मुझे इधर से उधर करते होंगे, यानी जब गुस्ल मैयत दिया जा रहा हो, और उस वक्त मेहरबानी फरमा जब मेरे रिश्तेदार मेरा जनाजा चारों तरफ से उठाए हुए लिए जाएंगे, और मुझ पर उस वक्त बख्शिश कर जब तेरे हुजूर आऊँगा और कब्र में तन्हा होऊंगा, इस नए घर में मेरी बेकसी पर रहम करम फरमा। रमज़ान अल मुबारक के दिनों की दुआओं में भी इस महीने का मकसद वाज़े हो रहा है। मफातिल जिनान में रमज़ान के दिनों की सबसे पहली दुआ में यूँ दुआ की जा रही है कि ये रातों की इबादत का महीना है, नेकी की तरफ वापसी का महीना, तौबा कबूल होने का महीना, बख्शे जाने और रहमत नाजिल होने का महीना है, जहन्नुम से रिहाई पाने और जन्नत में जाने की कामयाबी का महीना है। इससे भी रमज़ान अल मुबारक का हदफ हमें समझ में आ रहा है कि हम इसमें कोशिश करें, नेकी करें, तौबा करें, रातों को इबादत करें। ये बाज़ारों में घूमने का महीना नहीं है, ये तरह तरह के जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का महीना नहीं है। और इसी दुआ में जो दिनों की दुआएं हैं, पहली दुआ जो हम बयान कर रहे हैं जिसके चंद जुमले, इसमें ही ये जुमले भी अल्लाह से अर्ज़ किए जा रहे हैं कि सच्ची नीयत रखने और सच बोलने की तौफीक दे, मेरी तमाम मुरादें, ख्वाहिशें, आरजुएं, इरादे पूरे फरमा। और फिर ये दुआ की जा रही है कि वो चीज़ें मुझसे दूर कर दे जिनसे मैं अपनी जान के लिए खौफ खाता हूँ और जिनसे खौफ नहीं खाता हूँ, और उन्हें मेरे रिश्तेदारों, मेरे माल, मेरे भाइयों, औलाद से भी दूर फरमा, पर्दा पोशी फरमा मेरी, मेरे वालदैन, औलाद, अजीज़ों की, मेरे मिलने वालों की, और मोमिनीन और मोमिनात में से जो मेरे हम कदम हैं उन सब की दुनिया और आखरत में पर्दा पोशी फरमा। इसमें भी एक नुक्ता है कि जो अच्छी चीज़ें अपने लिए तलब कर रहे हैं वो अजीज़ों के लिए, वालदैन, भाइयों, मोमिनों, मोमिनात के लिए भी तलब करें। अब यहाँ पे देखें, अपने दिलों को हमें वसी करना होगा। हमारे बाज़ औक़ात किसी से नाराज़गी होती है, किसी से कुछ मसला होता है, तो यहाँ हमारे दिलों में हमने नरमी पैदा करनी है, अपने दिलों को साफ़ करना है, और फिर साफ़ दिल से उनके लिए भी दुआ की जाए, उनको भी अपनी अच्छी दुआओं में याद रखा जाए। फिर रमज़ान मुबारक की कुछ दुआएं तो मुश्तरका हैं कि रोज़ पढ़ने की हैं, लेकिन 30 दुआएं ऐसी हैं कि जो पहली रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक हर दिन की एक अलग दुआ है। बहुत छोटी सी मुख्तसर 2-4 लाइन की दुआ है। इसमें 8वें दिन की दुआ में अल्लाह से यूं दुआ की जा रही है कि ऐ माबूद, आज मुझे यतीमों पर रहम करने, उनको खाना खिलाने, खुले दिल से सबको सलाम करने और शुरफा यानी अच्छे लोगों के पास बैठने की तौफीक दे। अब देखिए, इसमें तालीम दी जा रही है, हमें सिखाया जा रहा है कि यतीमों पर रहम करना है, हमें उनके काम आना है, हम खुले दिल से सलामती भेजें लोगों पर, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। वही बात कि एक तरफ तो दुआ की जा रही है, अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है, और दूसरी तरफ ये दुआएं हमें अच्छे अखलाक सिखा रही हैं, दुआ करने का सलीका सिखा रही हैं। 11वें दिन की दुआ में कहा जा रहा है कि आज नेकी को मेरे लिए पसंदीदा बना दे, और गुनाह और नाफरमानी को मेरे लिए नापसंदीदा बना दे, और गैज़ो गज़ब को मुझ पर हराम कर दे। ये बहुत अहम बात है। जिस इंसान की नज़र में नेकी पसंदीदा हो जाए, जिसके लिए नेकी पसंदीदा होगी वो क्यों नेकी नहीं करेगा, और जिसके लिए गुनाह नापसंदीदा हो जाएंगे, जिसको गुनाह बुरे लगने लगेंगे, वो गुनाह क्यों करेगा। और यहाँ पर इस मकाम पर हमें नमाज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम नमाज को उसके आदाब व शराइत तवज्जो के साथ पढ़ें, फ़िक्ही अहकाम हमारे इल्म में होने चाहिए, हमें मालूम होने चाहिए, तो अगर हम नमाज़ को सही आदाब व शराइत के साथ पढ़ें तो नमाज के बारे में कुरान में कहा गया है सूरह अनकबूत में कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो अगर वाकई सही तरह से नमाज पढ़ी जाए तो बेहयाई और बुरी बातें, बुराइयाँ हमें बुरी लगेंगी। 28वें दिन की दुआ में अल्लाह से यूं दुआ की जा रही है कि इसमें मुझे मसाइले दीन याद करने की इज्जत दे, दीन के अहकाम को, फ़िक्ही अहकाम, इखलाकी अहकाम को दलील के साथ सीखा जाए, हासिल किया जाए। 29वें दिन अल्लाह से यूं दुआ की जा रही है कि मुझे नेकी की तौफीक दे और बुराई से तहफ़्फ़ुज़ फरमा, और मेरे दिल को तोहमत तराशी की तारीकियों से पाक कर दे। तोहमत गुनाह है, और गुनाह इंसान के दिल को तारीक कर देते हैं। यहाँ पर अल्लाह से दुआ की जा रही है कि अल्लाह तोहमत तराशी की तारीकियों से दिल को पाक कर दे। दुआएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुख्तसर सी गुफ्तगू तवज्जो दिलाने के लिए है कि हम इस महीने की दुआओं से इस्तफादा कर सकें, क्योंकि अभी माह रमज़ान के चंद दिन बाकी हैं और अभी हमारे पास वक्त है कि हम इन दुआओं को तवज्जो के साथ पढ़ सकते हैं। रमज़ान मुबारक की हर रात की कुछ तो मुश्तरका दुआएं हैं, लेकिन आखिरी अशरे की हर रात की मुश्तरका दुआ और मखसूस दुआएं भी मफातिल जिनान में मौजूद हैं। अभी शब-ए-27 आने वाली है, और उसके बाद रमज़ान मुबारक की आखिरी रात, जिसकी बड़ी फजीलत है और उसके आमाल बताए गए हैं। फिर शब-ए-ईद है, जिसमें अक्सर लोग बाज़ारों में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, यानी ये रात लोग बाज़ारों में गुजार देते हैं, जबकि मफातिल जिनान में है कि ये बाबरकत रातों में से है, और इस रात की फजीलत बेदारी यानी इस रात जागने, इबादत और सवाब से मुतालिक बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। अब इस रात की बेदारी का मतलब ये नहीं कि इंसान बाज़ार में घूम के बेदारी कर ले, फजूल कामों में बेदारी कर ले, टीवी के सामने बैठ के बेदारी कर ले, ये बेदारी का मतलब ये नहीं है। यकीनन आप भी समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि ये रात मर्तबे में शब कदर से कुछ कम नहीं। इस रात के भी आमाल बताए गए हैं, और अगर कोई सोचे कि इतने आमाल और क्या इबादत ही करते रहें, तो ये महीना है ही इबादत का। इंसान अगर ज़्यादा नहीं कर सकता, थोड़ा सा अमल अंजाम दे, लेकिन खुलूस के साथ हो, तवज्जा के साथ हो, ताकि इंशाल्लाह ताला परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इबादतें नहीं कर सकता है, तो मोमिनों मोमिनात के लिए दुआएं मांगे, क्योंकि दुआएं मांगना भी इबादत है और अल्लाह दुआ मांगने वाले से खुश होता है। सबसे अहम दुआ इमाम ज़माने के ज़हूर की दुआ है। इस दुआ को तमाम दुआओं से पहले करना चाहिए, और इसके साथ ये दुआ भी होनी चाहिए कि परवरदिगार हमें इमाम की तलब दे दे, उनकी मोहब्बत दे दे, और हमें इमाम के ज़हूर की रुकावटों को दूर करने वाले बना, उन लोगों में शामिल कर कि जो ज़हूर की रुकावटें दूर करने में मसरूफ़ हैं। हम उन लोगों में से ना हों कि जिनके आमाल खुद ज़हूर की राह में रुकावट बने हुए हैं। और अल्लाह हमें इमाम की इताअत करने वाले और उनके सच्चे मुंतज़रीन में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।